وكفى. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے اللہ والوں کی نشانیاں، اللہ والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اور ان صفات میں سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ اللہ والے راتوں کو عبادت کرنے والے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رات کی عبادت تم پر لازم ہے کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی. اللہ والوں کی ایک اور بڑی نشانی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. اور اللہ والوں کی ایک اور صفت جو بیان کی گئی پچھلی مجالس میں وہ یہ کہ اللہ والے جو ہے وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور یہ صفت اللہ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان لاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے. اللہ والوں کی ایک اور صفت بھی ہم نے پچھلی مجالس میں بیان کی، اور وہ یہ کہ اللہ والے اللہ کو فاعل حقیقی مانتے بھی ہیں، اس کا استحضار بھی رکھتے ہیں. فاعل حقیقی کہتے ہیں ہر عمل کا فعل، ہر فعل کا کرنے والا، ہر فعل کا حقیقی کرنے والا. یہ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے مانتے ہیں کہ ہر فعل کا حقیقی کرنے والا اللہ ہے، مگر اس کا استحضار صرف اللہ والوں کو ہوتا ہے. تو ان کا ورلڈ ویو، ان کا چیزوں کو دیکھنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہے. عام لوگ اگر کسی کو ڈانٹتا ہوا سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ مجھے کر رہا ہے. اور اللہ والے جو ہیں وہ اس کو اللہ کا عمل سمجھیں گے کہ یہ جو ڈانٹ رہا ہے یہ خود نہیں، اللہ اس سے پروا رہے ہیں اور یہ اس کا عمل نہیں بلکہ یہ اللہ کا عمل ہے. اس لیے ہر معاملے میں رجوع ان کا اللہ کی طرف ہو. آج کی اس مجلس میں اللہ والوں کی ایک اور بڑی صفت، ایک اور بڑی نشانی بیان کرنا مقصود، اور وہ یہ کہ اللہ والے جو ہیں صبر کرنے والے ہیں. تو اللہ والوں کی بڑی جو صفت ہے وہ صبر ہے، اور صبر وہ صفت ہے جو کچھ مشائخ نے فرمایا کہ یہ اللہ والوں کے درجات میں سب سے اونچا درجہ. صبر کرنے والا سب سے اونچا چلے جاتا ہے اللہ کے قرب میں. قرآن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اور حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت نصیب، یہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت صبر کی ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ سب سے نیچے چلا جاتا ہے. یہ بھی عجیب بات، ایسا نہیں ہے کہ چلو صبر کر لیا تو بہت اونچے گا، صبر نہیں کیا تو چلو ٹھیک ہے اپنی جگہ کھڑے رہے. صبر نہیں کیا جو سارا وقت بم بلاسٹ کرتا رہتا ہے وہ سب سے نیچے جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، یہ جو خوب غصہ دکھاتا رہتا ہے اس کے تو ایمان میں بھی فساد آ گیا. ज्यादा गुस्सा दिखाने वाला अपने ईमान की खैर बनाए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसको गुस्सा आने में बहुत देर, उसको बड़ा उकसाया जाए तब जाके उसे गुस्सा आए। तो अल्लाह वालों की बड़ी सिफत यह है कि अल्लाह वाले जो है सब्र करने वाले, अपने आप पे कंट्रोल करने वाले, और ये बात सही है। आम आवाम अगर किसी को अल्लाह वाला जानती है मगर वो देखती है कि ये तो ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, तो सच्ची बात तो यह है कि फिर उनकी असेसमेंट सही हुई कि जी इनका गुस्सा करना हैरान कौन है, कैसे हो गया। क्योंकि अगर अल्लाह वाले हैं, सबर ही सबर है, सच्ची बात तो यह है कि सबर करना अकलमंदी भी है, सबर ना करना बेवकूफी है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि जो किसी शख्स को नुकसान देता है अल्लाह उसको नुकसान देते हैं, जो किसी शख्स को मुशक्कत में डालता है अल्लाह उसको मुशक्कत में डालते हैं। तो अगर हम किसी की ज्यादती का बदला खुद लेंगे तो कभी ज्यादती कर जाएंगे और कभी ज्यादती नहीं भी करेंगे, और अगर अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुद लेंगे, जो मुनासिब उसका हल है अल्लाह ताला खुद ही कर देंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो ज्यादती कर रहा है वो बच जाएगा, वो भी नहीं बचेगा। हाँ ये है कि जिसने जुल्म पर ज्यादती पर सब्र कर लिया उसके लिए अल्लाह का कुर्ब भी है, उसके लिए इज्जतें भी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस शख्स के साथ ज्यादती जुल्म हुआ उसने इस जुल्म पर सब्र कर लिया अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाए। तो इसलिए अगर अल्लाह वाला ही बनना है तो सब्र के बगैर कोई चारा नहीं। मगर सच्ची बात यह है कि अल्लाह वाला नहीं भी बनना, ऐसा नहीं होगा कि चलो ठीक है अल्लाह वाला जो बनना चाह रहे हैं उनको तो सब्र आजमा सूरत हाल दुनिया में आएंगे, और जो इस लाइन में लगना नहीं चाह रहे उनको कोई नहीं होगा, उनकी मर्जी है सबर ना भी करें, ऐसा भी नहीं है। हर एक को सबर आजमा सूरत हाल पेश आएगी, ये कुरआनी वादा है, हालात से भी आएगी और लोगों से भी आएगी, दोनों का वादा अल्लाह ने कुरआन में कर। वजअलना बाज़ुकुम लिबाज़िन फितना, अल्लाह हमने बाज लोगों को बना दिया है जो तुम्हें तकलीफें देंगे। अतस्बीरू, फिर क्या तुम सब्र नहीं करोगे। तो अगर हम ये चाहेंगे कि ये सीधे हो जाए जो हमें तंग करते हैं, तो सीधा कोई नहीं होता क्योंकि अल्लाह ने उनको ऐसे बनाया है। और आप जिसके लिए तकलीफ का बायस बने हुए हैं, हाँ ये हो सकता है, इस पे आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं अपने आप को सीधा कर लूं। तो इसलिए जब ये फैसले हुए हुए हैं तो अकलमंद तो वही है तो सबर करे, और जो गिवन सिचुएशन है उसको देखे कि भाई ये है। और अगर ये सोचते हैं कि जी हर चीज को हम उलट पुलट कर रहे हैं, इंसान खुद उलट पुलट हो जाएगा, जो फैसले अल्लाह ने किए हैं वो उलट पुलट नहीं हो सकते। तो इसलिए सबर आजमा सूरत हाल में तो हर एक ने गुजरना है ही है। अकलमंदी यह है कि सबर आजमा सूरत हाल में इंसान वाकई सबर करे, और तो और काफिर लोग भी इस चीज का रियलाइज कर लेते हैं कि जी बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं है, जो गिवन सिचुएशन होती है उसी को कबूल करना होता है। इसलिए अंग्रेजी का बड़ा मशहूर मकूला है कि लाइफ इज 10% हाउ यू मेक इट, 90% हाउ यू टेक इट। ये जो दुनिया है इसमें 10 फीसदी आपके हाथ में है कि जी आप किसी चीज को थोड़ा सही कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो, 90% तो जैसा है वैसे कबूल करना पड़ेगा। तो देखिए काफिर भी इस दुनिया को देखते हुए इस नतीजे में पहुंचा है कि जी बहुत ज्यादा मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, जो मुझे जिस तरह से दिया हुआ है मुझे उसी तरह से डील करना पड़ेगा। तो सब्र के बगैर चारा भी नहीं है, अल्लाह वाला बनना चाहे नहीं बनना चाहे, मगर जिसने सब्र को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया उसने जिंदगी भी अपनी आसान कर ली और उसने अल्लाह का कुर्ब भी पा लिया, अकलमंदी वाला रास्ता इख्तियार कर। इसलिए नबी अलैहि सलातो वसलाम ने बार बार सब्र की तरफ, और आपने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी की किसी बात पे सब्र कर लेता है तो उसे पसंद नहीं आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अय्यूब अलैहि सलात व सलाम के सब्र का अजर देते हैं। तो सब्र पे अजर भी थोड़ा नहीं है, सब्र का अजर भी बहुत बड़ा है, और सब्र अकलमंदी और सब्र ही अल्लाह वालों का रास्ता है। इसलिए खानकाहों पे सब्र सिखाया जाता है, इंसान जो है वो मुश्किल सूरत हाल में भी उन सूरत हाल को कबूल करे, वुसअते कल्ब रखे। इसीलिए आदाए में मशायख में बड़ा, अब तो हमें उस पर कई मरतबा हंसी भी आती कि ये कैसा अदब है, मगर आदाब मशायख में लिखा है कि अगर शेख तुम्हें चौराहे पे खड़ा होकर जूता मारे तो लिखा हुआ है कि तुम जूता उठा के उसे वापस दो ताकि वो एक और तुम्हें मारे। ये मशायख ने लिखा है, और क्यों लिखा भाई, ऐसा क्यों करना है? हम इंसान तो कहेगा ये क्या शेख जूते मारते रहते हैं लोगों को, अगर मशाइख के आदाब में यूं इसलिए लिखा है कि अगर शेख जूते भी मार रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी इसलाह है, बल्कि जिसको जूते नहीं पड़ते ना उसकी इसलाह से इतना से होती नहीं है, कुछ ना कुछ जूते मारने भी जरूरी है। तो इसलिए मकसद इन तमाम आदाब का यही है कि किसी न किसी तरह से वुसअत कल्ब आ जाए, सबर आ जाए। इसीलिए हजरत अकदस सानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में डांट का पीरियड होता था, बहुत सारे पीरियड होते थे, जिक्र अस्कार के पीरियड, नमाज का पीरियड, इसी तरह औकात मुतायन थे हजरत की नसीहत के, औकात मुतायन थे तिलावत के, औकात मुतायन थे सोने के, औकात मुतायन थे जागने के, इसी तरह औकात मुतायन थे डांट के, कि सारे सालिकीन को सामने बिठा के हजरत एक एक करके सबको डांटते थे और खूब डांट पड़ती थी। और वो इसलिए कि डांट नापसंदीदा चीज है और उसको बर्दाश्त जब करेंगे तो सब्र पैदा होगा। तो हजरत की खानकाह में दिल को तकलीफ खूब दी जाती थी ताकि इंसान का सब्र बढ़े। तो उसूलों में से एक उसूल ये बनाया गया था कि जो रात को इतने बजे के बाद अगर नहीं सोएगा उसका बिस्तर उठा के खानकाह से बाहर फेंक दिया जाए। हजरत की खानकाह पे तशरीफ लाए हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, ये इन दोनों बुजुर्गों की जवानी की उम्र है। तो हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह से जैसे मशाइख से मिलने के लिए लोग आते हैं तो ये हजरत हजरत की खानकाह पे पहुंचे और इन दोनों को एक ही कमरा दिया गया। अब बड़े उलमा थे तो रात को जैसे बिस्तर पे लेटे तो कोई दीनी मसला आपस में डिस्कशन शुरू हो गई और जो वक्त मुतायन था सोने का उससे वक्त तजावुज कर गया। तो जो दरबान था वो आया और उसने आगे कहा कि नौजवानों सो जाओ वरना तुम दोनों का बिस्तर उठा के बाहर भेज। उस वक्त हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में से, तो वो भी वहां मौजूद थे, उन्होंने दरबान से कहा कि अल्लाह के बंदे इनको नहीं कहना ऐसे, बड़े उलमा है। तो दरबार खामोश हो गया। अगले दिन उसने हजरत को कहा कि हजरत रात मैंने ये जो दोनों बड़े आलिम आए हुए थे, मुफ्ती शफी और अल्लामा यूसुफ बिन नूरी, इन दोनों को मैंने कहा कि टाइम ज्यादा हो गया है, आप सो जाएं वरना आपका बिस्तर बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं कहना है। फरमाए अच्छा, ख्वाजा साहब हमारी खानकाह के उसूल को तोड़ना चाहते हैं, ख्वाजा साहब का बिस्तर उठा के बाहर फेंक। उस दरबान ने उठा के हजरत ख्वाजा साहब का बिस्तर बाहर फेंक दिया। अल्लाह, तो ये तमाम एक्टिविटी इसलिए होती थी इंसान के अंदर सब्र आ जाए, दिल की तंगी जो है वो खुल जाए, इंसान दूसरों की रबिश बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। और हम चाहते हैं कि नहीं, कोई हमें रबिश ना दे, कोई हमसे उल्टी सीधी बात ना करे, कोई हमें कोई ऐसी बात ना कर दे जो हमारे दिल पे गिरा गुजरे। तो अल्लाह वाले तो बन ही नहीं सकते अगर ये सोच है, जिंदगी भी नहीं गुजर सकती अगर ये सोच है। इसलिए वुसअत कल्बी ही अकलमंदी है, सबर ही अकलमंदी है, सबर में इज्जत भी है, सबर में अजर भी है, सबर में आसानी भी है और सबर में अल्लाह का कुर्ब भी है। अल्लाह ताला हमें ये बड़ी नेमत नसीब फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.